ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ प्रथम स्कंध अध्याय नहीं सप्तम स्कंध अध्याय दो असुर राज हिरण्यकशिपु। इस अध्याय के आज अंतिम श्लोक है 61 नंबर श्लोक। श्री नारद उवाच इति दैत्यपते वाक्यं दिति आकर्ण्य संतुषः पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं अधारय। श्रीनारद उवाच दैत्यः पतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य संतुषः पुत्रशोकं क्षणात्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं अधारय। इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य संतुषा पुत्रशोकं क्षणात्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं अधारय। श्रीनारद उवाच दैत्यः पतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य संतुषा पुत्रशोकं क्षणात्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं अधारय। शब्दार्थ श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा दैत्य पते हिरण्यकशिपु वाक्यम वाणी दिति दिति हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याख्य की माता ने दिति कौन है हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याख्य की माता आकर्ण्य सुनकर संतुषा हिरण्याक्ष की पत्नी सहित पुत्र शोकम अपने पुत्र हिरण्याक्ष का महान वियोग क्षणात् तुरंत त्यक्त्वा छोड़कर तत्वे जीवन के असली दर्शन में चित्तम हृदय को अधारयत लगाया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री नारद ने कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषाभानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। दोहराइए, से नारद ने कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषभानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। तात्पर्य, जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाता वह पुनः भौतिकतावादी कार्य में लग जाता है। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकतावादी दैत्य भी कभी कभी अपने किसी संबंधी के मृत्यु होने पर दर्शन के विषय में सोचते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति को इस मनोवृत्ति को श्मशान वैराग्य कहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। चार प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी। विशेषतया जब कोई भौतिक परिस्थितियों से अत्यंत पीड़ित रहता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतः कुंती देवी ने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी वास्तविक पवित्रात्मा दुख में रहकर भी कृष्ण का स्मरण करता है। अतः महारानी कुंती ने दुख पसंद किया, क्योंकि यह कृष्ण को स्मरण करने का सु अवसर होता है। जब कृष्ण कुंती देवी के पास से स्वदेश को लौट रहे थे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेदपूर्वक कहा था कि वे दुख में ही अच्छी थी, क्योंकि कृष्ण सदैव साथ रहते थे, किंतु अब जब पांडव सिंहासनासीन है तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का सु अवसर होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के अंतर्गत असुरराज हिरण्यकशिपु शीर्षक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री नारद उवाच इति दैत्यपतेर वाक्यं दीतिराकर्ण्य संतुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्पे चित्तम अधारयत। श्री नारद ने कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपने पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषाभानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेश को सुना। उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे ही कभी कभी श्मशान वैराग्य इसको कहते हैं, जो वैराग्य किसी कारण से उत्पन्न हो जाता लेकिन थोड़े समय रहता फिर समाप्त हो जाता। तो यहाँ जो हिरण्यकशिपु की माता दिति और उनके हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषाभानु की मन में और हिरण्यकशिपु भातीजों के मन में थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया, जब देखे कि उनके उनके हिरण्यकशिपु की हिरण्याक्ष की वध हो गया और हिरण्यकशिपु की मुखारविंद से प्रवचन सुने। मुखारविंद नाम कह दी हिरण्यकशिपु है, फिर भी वो भगवान नित्य सिद्ध पार्षद है, वो तो ड्रामा के राक्षस है, असली राक्षस नहीं है। तो फिर भी वो जय था, कहाँ था वैकुंठ। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु और हिरण्यकशिपु की मुखारविंद से प्रवचन सुन के इनको वैराग्य आ गया। इनको दिति को और ऋषाभानु आदि इनको वैराग्य आ गया, लेकिन ये वैराग्य प्रभुपाद जी कहते हैं श्मशान वैराग्य है, ये थोड़ा समय रहा फिर समाप्त हो गया है। ये शुद्ध भक्त नहीं बने कि इनका प्रवचन सुने और शुद्ध भक्त बन जाए। यदि कोई सच्चे भक्त का प्रवचन सुनता है तो क्या बनता है, भक्त बन जाता है। जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने महाभारत के वन पर्व से श्लोक भी कोट किए थे, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही है संसार में, प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई कि शरीर त्याग कर मृत्यु को वरण करके चले जाता है इस संसार से, लेकिन फिर भी हम सोचते कि हमारा मृत्यु नहीं होगा। ये संसार में ऐसा ही कई प्रवचन करता है, हिरण्यकशिपु जैसे है, हिरण्यकशिपु प्रवचन किया लेकिन स्वयं उसका फॉलो भी नहीं किया, फॉलो किया और बड़ा प्रवचन दिया गीता के, कहा कि सब संसार में ऐसा ही एक दिन सभी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पांच भूत से बना हुआ शरीर पांच भूतों से मिल जाएगा, लेकिन आत्मा इससे अभिन्न है, आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है। बहुत कुछ प्रवचन दिया इनको, इनको तो शांत, लेकिन स्वयं इसका फॉलो करने वाला नहीं था। प्रवचन देने के बाद तुरंत घोषणा किया, ठीक है अभी लोग आप लोग घर में रहो, जिसने मेरे भाई को वध किया वो हमारा परिवार के शत्रु है, जब तक मैं इसे जान से मार नहीं मार डालूंगा तब तक घर से वापस नहीं आऊंगा। प्रवचन का क्या फायदा है, स्वयं कुछ पालन नहीं करता। कोई वक्ता स्वयं बोलता है यदि जीवन में इसको उतारता नहीं है तो श्रोताओं के ऊपर भी इसका प्रभाव नहीं डालता है। कभी कभी ऐसा ही होता, कभी कई वक्ता है जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं और दूसरों को बड़े बड़े प्रवचन देने से उस प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके सिखाते थे, हैं अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखा है। स्वयं भगवान होते हुए भी इन्होंने आचरण करके सिखाया तभी उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता था। जो जिसकी कोई भी व्यक्ति कोई भक्ति भौतिक स्तर पर भी क्यों ना हो, कोई भी बात को यदि सफल कराना चाहता है तो उसको आचरण करना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कई प्रवचन में गांधी का उदाहरण देते हैं, मोहन चांद करमदास गांधी है ना, जानते हैं अभी काल आने आज ही है ना, क्या स्वाधीनता दिवस है तो जाति के पिता कहते हैं इनको भारत में साधारणतः, लेकिन उन्होंने भी कम से कम भौतिकवादी स्तर पर थे, लेकिन चाहे आध्यात्मवाद गीता लेकर हमेशा घूमते थे लेकिन उनके पास में ये शुद्धता था कि वो आचरण करके कहते थे, जो स्वयं आचरण करते थे है? तो पहले कहा करते कि बुढ़िया ने आई, बुढ़िया की जो लाला था क्या खाता था, उसकी घर में छोटा से बच्चे थे तो बहुत शक्कर खाता था, इतना मिठाई खाता था कि मिठाई खाने के कारण उसकी पेट में कीड़े बन गए, बहुत कष्ट भोगता था लेकिन मिठाई खाना नहीं छोड़ता था, डॉक्टर जितने मेडिसिन देने पर भी क्योंकि मिठाई खाना नहीं छोड़ता था तो कहां से बीमारी ठीक होगा, कैसे भी इधर छुपा कि ये करके वो करके कैसे भी खा लेता था, मिठाई खाता था, शक्कर खाने में बड़ा शौकी था उसको। तो इसलिए वो बुढ़िया ने कहा कि चलो गांधी जी के पास इसको ले चलता हूँ, हो सकता है कुछ गांधी जी कर सकते इसको। गांधी जी के पास लेके गया, गांधी जी कहे कि देखो आज नहीं एक महीने के बाद लेके आओ उसको, अभी नहीं एक महीने के बाद मैं इसको कुछ करूँगा। तो एक महीने के बाद फिर बुढ़िया फिर लेके आई, गांधी जी ने कहे कि लाला तू शक्कर खाता है, शक्कर खाना अच्छा नहीं है, एक शक्कर खाने से तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, शक्कर खाना छोड़ देना, कल से नहीं खाना, ये बुरा अच्छा चीज नहीं है। और ये बच्चा भी ऐसे सिर हिलाकर चला गया, नहीं खाऊंगा, सतसत जादू हो गया, दूसरा दिन से शक्कर टच नहीं करता था। अरे क्या हो गया, खा लो, वो मजाक करने के लिए सब कुछ लोग आ गए, बोले अरे खा खा गांधी बुढ़ा इधर नहीं, खा लो, मुख बंद करके होता नहीं खाता। तो बुढ़िया ने वापस आया, बोला गांधी जी आपको क्या जादू पता है, क्या कर दिए, मतलब सत को सत छोड़ ही दिया, शक्कर नहीं टच नहीं करता है, देखता भी नहीं, और आप तो इसी बात जिस दिन पहले ले आया था पहला दिन भी बोल सकते थे, और उस दिन आप बोले नहीं। अरे भाई एक महीने के बाद बोल रहे हैं, बोले मेरे को आप लेके आया इतने ही तो बोले, आप कोई बात तो एक महीना पहले बोल सकते थे। तो गांधी जी कहे कि जो पहले बार आप लेके आए थे इसको उसी दिन मैं स्वयं क्या शक्कर खाता था, और मैं जो स्वयं खाता था इसको बोलूंगा मेरे वाणी का प्रभाव नहीं डालता था, इसलिए इसको शक्कर खाना खिलाना छुड़ाने के लिए एक महीने से मैं स्वयं छोड़ दिया शक्कर खाना है? एक महीने से मैं शक्कर खाना छोड़ दिया तो अभी मेरे वाणी का प्रभाव उसके ऊपर डाला भौतिकवाद स्तर पर। जब इस प्रकार आध्यात्म मार्ग में भी जो प्रवचन करता है, धर्म को प्रवचन दे रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रचारक के पास में यदि वो स्वयं आचरण नहीं करता है और दूसरों को बोलेगा तो वाणी का प्रभाव डालेगा उसके ऊपर, नहीं डालने वाला है वो, जब बोलेगा फिर कैसे उसके वाणी का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहे कि हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है चारों प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर करता है, बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद ने किताबों को दिए हैं, इसको सावधानी से पढ़ना ये हमारा कर्तव्य है। और प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना चाहिए, जो पढ़े तो उसको दूसरे को बताना चाहिए, लेकिन हमारे प्रचार के जो प्रचार करते हैं जो बोलते हैं तो उसकी इफेक्ट कैसे डालेगा श्रोता के ऊपर, प्यूरिटी इज द फोर्स, अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं इसको फिर आचरण करना चाहिए। यदि प्रचारक स्वयं आचरण नहीं करेगा, प्रवक्ता, और दूसरों को बोलेगा आचर तुम ऐसे करो, वो वाणी का प्रभाव डालने वाला नहीं, स्वयं मंगलारती में नहीं आता होगा और दूसरों को बोला डेली मंगलारती आना, तो उसके वाणी का डाले प्रभाव कुछ पड़ेगा उसको जिनको बोल रहे हैं? खुद भागवत क्लास अटेंड नहीं करेगा, दूसरे बोलेगा नित्यम भागवत सेवा हर दिन भागवत क्लास में आना, तो उसकी बात कौन सुनने वाला है? जो आचरण नहीं करेगा उसके बात कोई सुनेगा? तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का प्रवचन क्यों काम नहीं किया इनके ऊपर? थोड़ा क्षणिक वैराग्य आया लेकिन सच्चे वैराग्य इनके दिल में नहीं ला पाया। कारण है कि हिरण्यकशिपु आचरण करने वाला नहीं था, वो तो क्षणिक खाली वो समावेश का सुजोग ले रहा था, कैसे इनको शांत कराएगा, बस थोड़ा वो ये लोग दुखी हुए थोड़ा है। ऐसे ही संसार में जो प्रोफेशनल भागवत के कथाकार है सब कथा करते हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छे प्रवचन देते, सब कुछ कहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप की कहानी सुनाया, बहुत सुंदर कहानी, दो दो कहानी कह के सुनाया इनको है, कैसे वो स्मशान में महाराज ने राजा सुजज्ञ की मृत्यु हो गया था और उसकी पत्नियां सब इसको घेर कर प्रार्थना रो रहे थे, फिर जमराज ने स्वयं आया बालक के रूप में धारण करके और इनको समझाया जीवन के दर्शन है, जमराज ने समझाया कि तुम ऐसे जिंदगी लाइफ नहीं, 100 वर्ष तक इस रोते 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 रहोगे भी, ये मरा हुआ व्यक्ति का फिर ये जीवित नहीं हो सकता है, इनको समझाया है ऐसे कि इसके लिए रोते रोते आपका भी मृत्यु हो जाएगा। तो बहेलिया का कहानी भी कहा कि वो बहेलिया था, गया था वो कुरंग, दो पक्षी थे, मादा पक्षी और नर पक्षी, कुलिंग पक्षी, दोनों परस्पर में थे, लेकिन वो एक शिकारी ने जाल डाला हुआ था उसमें दाना डाला था, वो मादा पक्षी ने आसक्त मैंने उसके लोभ में वो दाना खाने के लिए जाकर जाल में फंस गया और वो तो रोते रहा, कौन नर पक्षी रोते रहा, मेरा पत्नी को इतना विपद आ गया, मेरा पत्नी मर जाएगा तो मेरा के शरीर के रह के क्या फायदा है, बैठकर ऐसे ही विधाता क्यों ऐसे ही अन्याय किया मेरा पत्नी, ऐसे रोते रोते वो देखा कि ये बैठ के रो एक जगह बैठा हुआ है, शिकारी आया फिर इसको भी लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ा, वो पक्षी भी समाप्त हो गया इसके जीवन। तो इस प्रकार कहानी कहे, देखो तुम लोग ऐसे रोगे तो ऐसे ही रोते रोते तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ये वापस आने वाला नहीं है। ये कहानी कहा सुनकर ही थोड़ा सा वैराग्य आ गया, क्योंकि प्रवचनकर्ता के पास में शुद्धता नहीं था, तो इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला है। चलो, वैराग्य कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के वैराग्य होता है। इसको कहते हैं प्रभुपाद इस प्रकार वैराग्य, कौन सा वैराग्य है? स्मशान वैराग्य, क्योंकि स्मशान में हम जब देखते हैं कि सबको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहकर सबको ले गए और उसको जलाते हैं, तभी देखकर सुनकर थोड़ा वैराग्य आ जाता है, अरे हमारा भी ऐसे ही एक दिन स्थिति होगा ना, क्या एक दिन हमको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्षण में भूल जाता है, अरे क्या चलो हैं जो होगा होगा, मरने सब लोग हम भी मरेगा और जितना दिन जीते हैं तो क्या भोग लो हैं, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत, कौन जानता है शरीर भस्म हो जाने से क्या होने वाला है। चलो ठोका वैराग्य आता है, लेकिन दूसरे क्षण में वैराग्य फिर समाप्त हो जाता है, कहते यार क्या जितना दिन है भोगो शरीर को, कौन जानता है, स्मशान भस्म हो गया तो ठीक है जला दिया शरीर को, लेकिन इसका बात क्या होने वाला कौन जानता है, बस ऐसे ही स्मशान वैराग्य। दूसरे प्रकार का वैराग्य कहते हैं मर्कट वैराग्य, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखानिया, यथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त हया है। यद्यो रघुनाथ दास कुशमी तो सच्चे वैरागी थे, लेकिन उनको कले उद्देश्य बनाकर हम सभी को कहे महाप्रभु ने मर्कट वैरागी, बंदर की तरफ वैरागी। बंदर भी अपने को बड़ा वैरागी दिखाता है, ठंडी गर्मी सब सहन करता है, मात्र स्पर्श कौनते कौनते अशीत उष्ण सुख दुख दा है सब सहन करता है। भगवत गीता के उपदेश है पालन करता, हम लोग नहीं पालन कर पाता, हमको कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, ठंडी में गर्मी में एसी चाहिए, लेकिन बंदर को कुछ नहीं चाहिए, पड़ा पूरे पूरे फॉलो कर रहे हैं, मात्र स्पर्श शीत उष्ण सुख दुख सहन करता है। लेकिन बड़े वैरागी दिखाई पड़ता है बाहर से, लेकिन अंदर में उसकी लस्टी डिजायर कंट्रोल नहीं है, बंदर के पीछे भटकता रहता है। तो ऐसा ही जो बंदर की तरफ अर्थात अंतकरण में सारे इंद्रिय भोग की इच्छा होते हुए भी बाहर से हम वैरागी का वेश धारण कर लेते हैं, तो इसको कौन सा वैरागी कहते हैं, इसको कहते हैं बंदर की जैसे वैराग्य है। वह कभी कहते हैं मार्जार वैराग्य, बिल्ली का वैराग्य। बिल्ली एक तो नीति नीति शास्त्र में कहानी आता है जरदगव की कथा, जरदगव एक बहुत बड़ा सारे पक्षियों ने देखे कि बिल्ली बार बार खाता, मैंने बच्चों को पक्षी के बच्चे से घोसला जाता है उसमें जो अंडा दे जाता था ये बिल्ली जाकर उसको खा जाता था। सो बिल्ली सब ने सभी पक्षी मिलकर इसके लिए और गिद्धों की राजा गिद्ध की जो राजा था जरदगव नाम के वो उसको रख दिए गार्ड, कहे कि आपको जो खाना है हम सब मिलकर आपको तो व्यवस्था कर, लेकिन आप यहाँ पर गार्ड रहो, हमारे बच्चों को ये बिल्ली खा जाता है इसको जग की रहना। तो गिद्ध के साथ में डरता था गिद्ध को, कौन बिल्ली नहीं आ पाया, वो तो बहुत बड़ा गिद्ध है तो कब मारेगा तो चोंच में तो बिल्ली खत्म कर देगा। लेकिन बिल्ली सोचा कि क्या करूँ अभी है? प्लान बनाए तो उसको देखा का देखा देखा कि गिद्ध को गया, उसके बाजू में गंगा नदी था, गंगा में जाकर डेली पानी छिड़कता था, बाजू में से घास जो है घास खाने लगा है, घास खाते थे। और वो गिद्ध सामने दिखा कर ऐसे आकाश को देखा कर कुछ जैसे कुछ मंत्र पढ़ रहा है ऐसे आंख बंद कर रहता था। तो कुछ समय से आस्ते आस्ते फिर वो जरद को देखा कि अरे ये तो बड़ा संत जैसे देख रहा है, तो बड़ा गंगा में स्नान कर रहा है ऐसे घास खा के रह रहा, और आके भी जरद को साथ में मित्रता करने लगा आस्ते आस्ते। क्या कि देखो मैं सब छोड़ दिया, अपना स्वभाव छोड़ दिया, मैं अभी संत बनना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ। और सब गया ऐसे आस्ते आस्ते दोस्ती बनाते बनाते उसके इतने घनिष्ठ हो गया, किसके साथ जरद के साथ घनिष्ठ हो गया। तो एक दिन जरद को कहा कि मित्र अब तो बहुत समझ गया आप सच्चे संत हो, आप अभी कुछ कारण से मुझे अभी इमरजेंसी थोड़े समय के लिए मैं बाहर जाता हूँ, आप इनके देखभाल करो। किन की? ये बच्चों को सारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं घोसले में हैं, और इनकी इनको आप थोड़ा सा मेरे एब्सेंट में थोड़ा समय देखभाल करो। अब विश्वास हो गया, छोड़ के चला गया, बिल्ली को पूरा सुजोग मिल गया, जिसके लिए संत बना था पूरा सुजोग मिल गया, सारा बस बच्चों को खा के समाप्त कर दिया, बच्चे को खा पी के बस भाग गया। जब वापस आता देखा कि जरद को आता मित्र कहाँ गए, सर्वनाश हुआ, सभी वापस आकर फिर पक्षी सब इसको चला, क्या क्या तुमको गाड़ रखे थे कहाँ भाग गया, तुम किसको देके चला गया, जिसके लिए गाड़ रखे थे उसी को छोड़ के चला गया। कभी वैसे ऐसे होता है, कभी साधु का वेश व्यक्ति धारण कर लेते किसके लिए अपने इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए। मैं सुना काल कोई बोला आपका दिल्ली में भी बहुत लोग साधु भेष में घूमते हैं, और इनका लक्ष्य क्या होता है, कहीं लूटना कहीं कुछ अवैध काम करना, वैसे ही करके बस घूमते हैं। रावण की चले, रावण भी साधु वेश धारण कर लिया, साधु वेश धारण करके किसको हरण किया, सीता। तो ऐसा ही कभी कभी वैराग्य दिखाई पड़ते हैं, ऐसे वैराग्य भी आता है। यदि कोई वैराग्य कभी कभी हमें तीन प्रकार के कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों के माध्यम से भी वैराग्य आ सकता है। कर्म के माध्यम से वैराग्य आता है जब कर्म करते करते हम थक जाते हैं, पूरे इंद्रिय तृप्ति के बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते थे, कभी कभी असफलता होने से वैराग्य आ जाता है। वो श्रीगाल था ना, श्याल था, देखा कि अंगूर झूल रहा है पेड़ से, बहुत अंगूर झूल रहा है, उसको कहा कि अरे ये लोग तो सब अंगूर खाते हैं, कुछ टेस्ट होगा इसका, और बहुत छिलांग लगाया अंगूर को खाने के लिए, छिलांग लगा के वो क्या खा नहीं पाए, मुख गया नहीं वहां तक, तो क्या डिक्लार किया, बोला चलो ये खट्टा है अंगूर, सारे खट्टा है निकाल के है ना। तो ऐसा ही कभी कभी होता है, लोग चाहते इंद्रिय तृप्ति इंद्र तो जो पूरा इच्छा है, पूरा प्रयास करते, जब नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो फिर कहते कि सो बेकार है, चलो भजन भजन करते भगवान की है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जो भजन करने आएगा, फिर जो सच्चे अंगूर खाने इसको मिल जाएगा, तो फिर भजन छूट जाएगा। कुछ ज्ञानी लोग कुछ होते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान से वैराग्य प्राप्त हुआ, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया और ऐसा हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त हुआ फिर को सोचा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, चलो है साजुज्य मुक्ति प्राप्त करना, उससे आनंद मिलेगा। लेकिन जो साजुज्य मुक्ति की आशा लेकर मतलब ज्ञान प्राप्त करके फिर अभ्यास करते हैं, अंत में उनकी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि हाँ साजुज्य मुक्ति तक भी प्राप्त कर ले, तो फिर कहते कि पतंती अधा, फिर इस जन्म मृत्यु संसार से गिर जाते हैं। क्योंकि जीव का जो नित्य स्वभाव भगवान की सेवा करना, सेवा जब तक वो सेवा में नहीं लगेगा, उसकी वैराग्य भी स्थिर नहीं हो पाएगा। वो ज्ञानी होकर भी यदि वो अपने ज्ञान को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तो फिर वो भी बेकार हो जाएगा। प्रकृत में जो भक्ति के माध्यम से जो वैराग्य प्राप्त होते हैं, वही वैराग्य स्थिर हो पाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि साधु कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे क्षय। साधु की कृपा के बिना, सच्चे साधु की मुख से प्रवचन नहीं सुनने से, जो माने आचरण करता है स्वयं, और वो प्रवचन नहीं सुनने से, उनकी मुखारविंद से जब तक सुनोगे नहीं, साधु के संग जब तक नहीं करोगे, किसी संत की कृपा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक भक्ति की शुभारंभ होने वाला नहीं। साधु कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, भक्ति का शुभारंभ नहीं होता है, इसी से भक्ति शुभारंभ होता है। और साधु ने भक्ति तो दूर की बात है, संसार के प्रति मोह भी नष्ट नहीं होगा जब तक संत कृपा नहीं करेंगे। रत्नाकर के प्रति नारद जी की कृपा हुआ, तभी उनके संसार छोड़ गया। नारद जी कृपा की, किसकी? रत्नाकर की। इतने हमारे पूरे दुर्दांत व्यक्ति था, सब लूट के करके अवैध उपाय से धन कमा के परिवार पोषण करता था, लेकिन नारद जी को दया हो गया, अपने जीवन को संकट में डालकर भी गए उसको समझाए जीवन का स्थिति कि अब तो क्या है तुम्हारे अंत में, कोई तुम मुझे अकेले आया अकेले जाएगा, ये सब जितने कर रहा है तुम्हारा पाप जो कर रहे हैं, पाप के फल भोगना पड़ेगा तुमको, नहीं ले जाएगा जमदूत बांध के। तो उसको भी विश्वास ने बोला नहीं, ये तो ऐसे अपने को यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहा है। नारद जी कहे तुम मुझे बांध दो ना पेड़ में, पीछे बांध दो हाथ कर, मेरे पीछे हाथ करके जाओ घर में, देखो प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। तो बांध की गया नारद जी पीछे से, बांध की घर में गया और पूछा सबको, पत्नी को, पत्नी कहे कि देखो ऐसे ही मैं धन कमा रहा हूँ, तो ये तुमको जो साड़ी दे रहा हूँ, अलंकार दे रहा हूँ, जी कुछ भोग वस्तु दे रहा हूँ, ऐसे ही धन लूट के ला रहा हूँ, मेरे जो पाप हो रहा है, पाप का तुम भाग लोगे कि नहीं? तो कहे मैं क्यों पाप का भाग लूँ, हैं तुम कैसे ला रहे हो, मेरे को क्या पता, तुम मेरा पति हो, तुम्हारा काम है मुझे मेरा आवश्यकता देना। प्रभुपाद जी की पत्नी भी यही सोची, क्या सोची, मेरा पति है तो मुझे सब कुछ देना, मेरे को जो जरूरत है मुझको सब देना चाहिए। तो ये भी सोचिए ऐसे ही है कि मैं तुम्हारा पाप का भाग नहीं लूंगी, मेरे को शास्त्र कहते हैं कि सहधर्मिनी, तुम्हारा धर्म में जो धर्म करोगे पुण्य करोगे 50% भाग है, पाप में नहीं कहा, शास्त्र नहीं कहा गया, मैं सहधर्मिनी हूं, सह पापिनी नहीं हूं, सहधर्मिनी धर्म के भाग। तो बड़ा बोला ये मुश्किल है, इसके लिए इसको मुस्कुराता मुस्कुराते देखने के लिए इतनी सारे चीज मैंने परिश्रम कर रहा हूं, और ये कह रहा है कुछ नहीं लेने वाली है। और फिर बच्चों को पूछे, बच्चों को तो मासी बोले नहीं नहीं बात, पिताजी आपका पाप आम क्यों लें, आप अभी छोटे हैं, हम लोग आप पालन कर रहे हैं, आप बड़े हो जाओगे फिर हम आपके पालन करेंगे, आप बुढ़े हो जाओगे फिर आप पालन करेंगे, हम आपके पाप नहीं लेंगे। माता पिता के पास गए, माता पिता कहे कि देखो बेटा तुम छोटा हुआ था, तुमको हम लालन पालन करके बढ़ाए थे, अभी हम बुढ़े होगी ये तुम्हारा काम है, हमारा तो धर्म है हमको पालन करना, हम तुम्हारे पाप नहीं लेंगे, क्यों लेंगे। तो उसका आंख खुल गया, किसकी कृपा से, नारद जी की कृपा से। तभी जाके नारद जी के चरण में गिरा, रोने लगा। तब नारद जी ने कहे कि ठीक है बोले तुझे कैसे उद्धार करूं, उपाय देखने लगे, फिर कहे कि बोलो मरा हुआ नहीं, बोले राम, बोले कि सुंदर नाम है ये, सरल नाम बोल सकता, कृष्ण थोड़ा जुक्ताक्षर है, हो सकता उच्चारण नहीं होगा, बोले राम बोलो, बहुत प्रयास किया राम नहीं बोल पाया, कौन बल नहीं रत्नाकर, क्योंकि अत्यधिक पापी जो होते हैं उनकी मुख से नाम उच्चारण नहीं होते हैं। पर जो मायावादी कृष्ण के निंदक होते हैं, बनारस में जो महाप्रभु थे तो वो प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी सन्यासी थे, उनकी मुख से भी कभी कृष्ण के नाम नहीं आता था। तो महाराष्ट्र के एक भक्त था ब्राह्मण, तो जाता था उनके पास में, महाप्रभु के पास भी आता था। वो जाता था जो मायावादी के पास में, ये कुछ कृष्ण के नाम लेकर कुछ बोलता था तो लोग कृष्ण व राम ऐसे उच्चारण करने के लिए प्रयास करने पर भी उनके मुख से नहीं निकलता, तो आश्चर्य होता था। महाप्रभु पूछा, ये जो मायावादी सन्यासी उनके मुख से नाम क्यों नहीं आ रहा आपको भगवान के नाम? तो महाप्रभु कहे कि मायावादी कृष्ण अपराधी है, ब्रह्म चैतन्य कहे निरवधि, इनके मुख से केवल ब्रह्म चैतन्य निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ऐसे ही वो शब्द आता है, कभी भी वो भगवान के राम कृष्ण नारायण कभी इनके मुख से निकालने वाला नहीं है। ऐसे अत्यधिक पापी होने के कारण भी ये दर्तनाकर के मुख से भी राम नाम नहीं है। तो इस लोग को देखा है मरा हुआ वृक्ष, क्या हुआ वृक्ष? मर गया। तो बोलो मरा तो बोल सकते ना, उल्टे बोलो, उल्टा तो बोल लिया है मरा, बोले ठीक है हो गया, उल्टे जपो मरा 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 हो गया है, उद्धार हो गया। चलिए कहते साधु कृपा बिना और दूसरे किसी भी उपाय से भक्ति व सच्चे वैराग्य संसार के प्रति प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी की कृपा से दशरथ नागर को जो वैराग्य प्राप्त हो गया फिर वो वाल्मीकि बन गए हैं, इतनी बड़े पतित स्थिति से फिर सर्वोच्च स्थिति है, आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना किया महान भक्त बने। संत की कृपा होगा तभी कोई भक्त बन सकता है। प्रभुपाद ने गए पाश्चात्य जगत में ये मलक्षिंग को जवनों को भी है कृष्ण कथा सुनाकर कृष्ण प्रसाद खिलाकर भक्त बनाए। लेकिन आप यदि कोई प्रोफेशनल रिसाइटर है बस स्वयं आचरण नहीं करते, हिरण्यकशिपु के रूप में के समान प्रवचन करता होगा और प्रवचन करते रहेगा उसका आप सुनोगे तो उसका कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है, क्योंकि प्रवचन करता स्वयं आचरण नहीं करता है। वो कहता कि आप बैगुन नहीं खाओ, लेकिन स्वयं बैगुन खाता होगा डेली, बैगुन भरता के बिना उसके खाना नहीं होता होगा। तो ऐसा व्यक्ति की प्रवचन जब सुनोगे कहाँ से आपको ऊपर लाभ होगा? वैराग्य तभी महाप्रभु ने आए हैं वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिजे तमहं प्रपद्ये। सर्वम भट्टाचार्य महान गृहस्थ भक्त है, महाप्रभु की महान भक्त है, गृहस्थ आश्रम में तो प्रार्थना करते महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु किस लिए अवतीर्ण होते, एक कारण है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग को सिखाने के लिए है। वैराग्य विद्या ये भक्ति योग के माध्यम से ही प्राप्त, सच्चे वैराग्य भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकता है। और महाप्रभु स्वयं आचरण करके इसको सिखा रहे थे, आचार्य स्वयं आचरण करके सिखाए कैसे हम संसार में सच्चे वैराग्य को आचरण कर सकते जो भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति करेंगे। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों ही भक्ति माता के दो पुत्र हैं, तो माँ को लेके चलोगे बछड़े दोनों पीछे चलेंगे है, गाय को जो दो बछड़े उसकी है गाय का, तो गाय को लेके चलो बछड़े अपने अपना चलेंगे। भक्ति की इसलिए कहे कि पद्म पुराण में कहा जाता है कि माँ भक्ति जो है माँ है और ज्ञान वैराग्य दोनों बछड़े हैं उसके साथ है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण में भक्ति करने से ही वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति योग की विधियों को प्रामाणिक आचार्यों के निर्देशन में भक्ति योग के मार्ग को आचरण करने से जनयति आसु वैराग्य, बहुत जल्दी से जल्दी संसार के प्रति क्या उत्पन्न होगा? वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और वैराग्य केवल नहीं ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा, भक्त तो अज्ञानी नहीं रहता है। भगवान कहते कि तेषांग एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामी आत्मभावस्थ, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है मैं कृपा करके उसी अंतकरण में बैठकर उसके सारे ज्ञान के प्रदीप को प्रज्वलित करके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूं। श्री भक्ति के माध्यम से ही हमें सच्चा वैराग्य प्राप्त हो सकते हैं और दूसरे उपाय नहीं है। और हम कहीं से इधर से उधर से सुनने पर भी, कई जो लोग प्रोफेशनल रिसाइटर हैं उनकी मुख से सुनने से कभी भी हमारा आचरण शुद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि स्वयं आचरण नहीं करते हैं। जो आचरण नहीं करता उसे सुनने से हम कहाँ से, हमारे ऊपर प्रभाव कहाँ से डालेंगे? तो इसलिए सच्चे वैराग्य को श्मशान वैराग्य हम नहीं चाहते, हम चाहते कोई ऐसे श्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, मारजार वैराग्य, ऐसा वैराग्य कोई चाहते हैं? आप जो बैठे सब सच्चे वैरागी बनना चाहते हैं ना, चाहते कि नहीं है? कभी कभी हमें वैरागी ऐसे ही बन जाते हैं, मैंने नकली वैरागी भी बन जाते हैं। कैसे? एक व्यक्ति था, अपने पत्नी मैंने अच्छे ग्रस्त जीवन में था, 3-4 बच्चे थे, लेकिन इसको अच्छे खाने में बहुत शौक था। डेली क्या खाएगा? कम से कम 8-10 आइटम, और अच्छे परिश्रम भी करता था, धन भी कमा के लाता था। और पत्नी बोले लोग कुकिंग करना, ये सब आइटम पहले लिस्ट लिख जाता, सुबह सुबह बोलता था आज का मेनू क्या है, मेनू दे जाता था, यान ये मेनू बनना है, है? पूरे पूरी में गया था, जगन्नाथ की दाल देखा बहुत टेस्टी, ऐसे ही बनाना, हत्ता हत्ता पूरा दाल, और पनीर की सब्जी, परवल की भाजी, और बहुत कुछ चटनी, टमाटर चटनी, साग, तो बहुत कुछ, कम से कम 10-12 आइटम लिस्ट दे के चले जाता। ये आज कुकिंग होगी राना, मैं जो आऊँगा लंच में, वो बेचारी 2-3 बच्चे के साथ वो घर के सारे काम संभालना है, तो कुकिंग करने संभव नहीं होता, तो 2-4 बनाते, कभी कभी होता कभी नहीं, 2-4 आइटम बना के रख देते। जिस दिन देखा कि उसके मेन्यू की अनुजाई इस आइटम नहीं बना, कहा कि क्या तुम बोल के क्या था नहीं बनाए, तुम समझ में नहीं आ रहे, तुम ऐसे यदि मुझे अच्छे से मेरे बात नहीं सुनते रहोगे मैं तुमको छोड़ के संन्यास ले लूँगा, धमका देते संन्यास ले लूँगा संन्यास ले लूँगा। अरे तू डर जाती थी संन्यास ले, बोला तुम ही फिर घर संभालना, तुम बच्चों को संभालना, मैं छोड़ के चले जाऊँगा संन्यास ले लूँगा। और उस गाँव के 8-10 किलोमीटर दूर में एक साधु रहता था, बड़ा संत अच्छे प्रसिद्ध साधु, बोला उसके पास जाकर संन्यास ले लूँगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, कहाँ कटवा से जाकर कैसे भारतीय संन्यास ले लिया, मैं भी संन्यास लेके छोड़ के चले जाऊंगा। ये डर जाती थी, अरे ये छोटे छोटे बच्चे क्या होंगे मेरे, और रो रहे। तो एक का दिन सच को सच जिस सन्यासी जाकर जिस संत से संन्यास लेना चाहता था, बोलता था, धमकी देता था, वो सन्यासी माधुकरी करते करते उनके दर्जे के सामने आया, और वो माता जी ने देखा कहा वही महात्मा, जाकर तुरंत ही प्रणाम किया, और हर दूसरे भिखारी को वैसे एक मुट्ठी चावल देता, लेकिन आप तो पूरा प्लेट में बहुत अच्छा से सजा के चावल दाल सब्जी सब घी सब लेके गया, प्रणाम करके और महात्मा जी को दिया। महात्मा बोले ये तो अच्छा क्यों दे रहा, श्रद्धालु है दे रहे, तो इसके बाद रोने लगे जोर जोर से। मैं बोले क्या है बेटी, क्यों रो रहा है, क्या हो गया बेटी, रो रही क्यों? ना मेरा एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? नहीं, मेरा पति को कभी आप संन्यास नहीं देना। क्या तुम्हारा पति संन्यास, तुम्हारा पति कभी मेरे पास आया नहीं? नहीं नहीं, वो मुझे डेली धमकी देते हैं, ऐसे धमकी देते हैं संन्यास ले लेंगे, यदि किसी ने संन्यास लेना चाहता हो। बोला कि ऐसे देखो टेली बहुत अच्छा अच्छा मुझे बोलते कि ऐसा ही मेनू है, ऐसा ही बनाना, नहीं बना पाती तो आके टेली डांटती है, मैं काल ही संन्यास लेके चले जाऊंगा, और मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या होगा जो संन्यास ले लेने से हो। तो साधु ने समझ गया, बोला ये इसीलिए बोल रहा संन्यास लेना है, तो आज आएगा ना वापस, आज बनाना ही कुछ, आज सिर्फ राइस और दाल साग बस, कुछ नहीं बनाना। और उसका स्वभाव यह आएगा, बोलेगा फिर चिल्लाएगा बहुत, तो बोलेगा चल आज पूरा एकदम उग्र होना, उसको झाड़ू पकड़ लेना, बोले चल जाओ संन्यास लो, जाओ संन्यास लो, गेट आउट कर दे, निकाल देना। और तुमको पूरा विश्वास रहना मैं कभी भी इसको संन्यास नहीं दूंगा ना, ये संन्यास लेने के लिए क्वालिफाइड है। अब तो उसको तो साहस होगी, अतः से उस दिन तो फिर और साधु तो साहस दे दिया कि कभी नहीं, मैं बोला सब मैं तुझे सच वचन दे रहा हूँ, साधु का वचन, मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुम्हारे पति को कभी भी मैं संन्यास नहीं दूंगा ना, संन्यास लेने के लिए क्वालिफाइड है, तुम इसको आज डांट के निकाल देना घर से। तो आ गया दोपहर को लंच के, तो देखा कि क्या है, साग राइस और दाल और साग, तो एक तो उग्रमूर्ति हो गया, बोला ये लिमिट के बाहर हो गया, हर दिन बोलते बोलते थक गया मैं, तुम सुनती नहीं हो मेरे बात, आज ही जा रहा हूं संन्यास लेने। तो बोला जाओ, गेट आउट। बोला अरे इसको क्या हो गया आज, बोला जाओ इसी मुहूर्त निकालो, झाड़ू में बोला जा रहे कि नहीं, देख रहे ना मेरे हाथ में है, निकालो घर से, ये घर में मैं संभाल लूंगी, मेरे बच्चे घर सब संभाल लू, चले चल गेट आउट। बार बार गेट आउट झाड़ू देखा, तो क्या करे बेचारा, तो बोल ही दिया, तो बड़ा मुश्किल से फिर घर से निकल गया, और आ गई फिर बोला छोड़ देखता हूँ, फिर ट्राई कर लेता हूँ। वो साधु के पास गया, बोला जाओ औषधि के पास, अब संन्यास। तो उसके पास गया तो पहुँच गया, तो उसे पहले जानता था सब बात, बोला बेटा क्या कैसे आए ना ऐसे, वो कुछ बोला था, ठीक है समझ गया हूँ आपका घर में कुछ न कुछ संसार के प्रति वैराग्य आ गया होगा, संन्यास ठीक है बैठो आज वहाँ रहा जा रात में, सुबह सुबह बोला चलो माधुकरी चलो हैं, माधुकरी जा रहा तो क्या करेगा वो देखेगा तो लोग क्या सोचेगा, इसलिए मुख में सही कपड़े से मुख में डाल के पीछे पीछे चलता था साधु का, और वापस थोड़ा भी लेकर आया साग बोला इमली के पेड़ के नीचे साधु रहता था, इमली का पत्ता थोड़ा तोड़ के लाके चटनी बना दिया, इमली को पीस के थोड़ा साग लिया बस, थोड़ा साग इमली का चटनी और भात राइस बस भोग लगा दिया, अपने गोपाल को रखा था महाप्रभु को रखा था भोग लगा दिया, तो चले लाओ प्रसाद पाएंगे महाप्रसाद बैठो। सामने जब आ गया ये मोटा मोटा चावल है, ये घर में तो पूरा बासमती चावल खाता था, इतना मोटे मोटे चावल और साग और ये इमली इमली पत्ते की चटनी कभी जिंदगी में देखा भी सुना भी नहीं देखा है, तो देखा और ऐसे देख जोर जोर से इसको रोने वाला खाएगा क्या, बहुत जोर जोर से रहा। तो साधु कहा कि ऐसा ही बैरागी थोड़ी सन्यासी बनता है, है? चलो यहां से घर जाओ और बेकार में इसको डांटो मत, किसको पत्नी को बिना कारण से डांटना नहीं है, उसको डांट के डेली डांटता है, तुझे अभी तो अच्छे अच्छे खाने का तो शौकीन मने है नहीं, इंद्रिय तृप्ति के सारे भावना तुम्हारे मन में भरा हुआ है और सन्यासी बनने आ गया, ऐसा ही होता है कभी कभी सन्यासी बनने के लिए हमारे मन नहीं हो जाता ना, सन्यासी बनने की इच्छा होता है लेकिन संसार के प्रति वैराग्य नहीं, ऐसे नकली भी वैराग्य नहीं आता है, नहीं नकली वैराग्य भोग के लिए वैराग्य के बहाना करना है, वैसे हमारा ईश्वर में सोचते कि हम सन्यासी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा है, सन्यासी को अच्छा घूमने में मिलता है, देश विदेश भी जा सकते हैं, प्लेन में भी घूम सकते हैं, जहाँ भी सन्यासी जाएगा अच्छा उसको रेस्पेक्ट मिलता है आदर मिलता है, इसकी डाइट के अनुसार खाना मिल जाता सब कुछ होता है, तो सन्यासी लेने से क्या दिक्कत है, फिर सच्चे यदि संसार में यदि वैराग्य नहीं आएगा फिर क्या होगा, बाप में बंदर की हालत होगा, ऊपर से वैराग्य लेकिन बंदर की तरफ फिर घूमते रहेंगे, तो इसलिए सच्चा वैराग्य, लेकिन सच्चा वैराग्य केवल कैसे मिलेगा, भक्ति के माध्यम से है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजित जनयति आसु वैराग्य, भगवान वासुदेव की भक्ति से वैराग्य प्राप्त हो, सच्चे वैराग्य प्राप्त होती है, लेकिन वासुदेव के चरण में भक्ति भी कैसे होगा, साधु की कृपा से है, जो साधु कृपा करेगा कैसे, महान वैष्णव नारद जी ने कृपा किया, दशरथनाकल को कृपा किया, मुरगारी को कृपा किया है, कई लोगों को नारद जी ने कृपा करके, महाराज प्राचीन बहिरी को कृपा किए, संसार में भरे हुए थे कर्मकांड यज्ञ कर रहा था, उसको भी नारद जी ने सुनाया सारे कहानी है, चौथा स्कंद भागवत पूरे पुरंजन की कथा सुनाकर उसके मन में भी वैराग्य को उत्पन्न कराए, इसलिए साधु वैद्य है, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तार मंत्र बड़े माया पिसाची पड़ा, ये बद्धजीव ऐसा ही भोग इच्छा से घूमते रहता है 84 लाख जोनी में, मनुष्य जोनी में भी ऐसे ही भटकते रहता है, कहाँ मिलेगा इंद्रिय भोग की वस्तुएं कहाँ मिलेगा, भटकते रहते भटकते भटकते कभी यदि किसी को तो किसी साधु के संग में आ गया, साधु की पास आया तो साधु फिर इसको सिखाएगा जीवन का लक्ष्य क्या है, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, ये स्पिरिचुअल डॉक्टर है साधु, जैसे हम शरीर के लिए डॉक्टर जरूरत है, आत्मा के लिए भी डॉक्टर की जरूरत है, आत्मा अभी बद्ध अवस्था में कंडीशन है, इसको मुक्त करने के लिए डॉक्टर का जरूरत है, वो है कौन, साधु, साधु इसको देखता, देखकर फिर इसको करुणा कृपा उसको होता है, उसके मन में करुणा उत्पन्न होता है, बौद्ध जीव को फिर कैसे मुक्त होगा उससे, इसको उपाय ढूंढता है, ब्रह्मांडे भ्रमिते यदि न ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन, भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, भक्तिलत का बीज प्राप्त होता, श्रवण कीर्तन जड़े करे सेचन है, तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन फल गुरु साधु ने इसको सिखाता है, मंत्र दीक्षा देकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है कदा बीमारी आदमी हो अभी कुछ पथ्य तुम्हारे लिए जरूरत है, कुछ चीज नहीं खाना और नहीं खाना कुछ चीज, कुछ डॉक्टर कहता ना बीमारी के लिए कुछ मना करता है, ये नहीं खाना, तो वो भी कहता कि तुम बद्ध जीव है और तुमको अभी चारों चीज में मना करता हूँ, इसको नहीं करना, क्या नशा नहीं करना, जुआसटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना और सदा हरिनाम की कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जो साधु की निर्देशन को फॉलो करोगे आस्ते आस्ते संसार के प्रति सच्चे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। हैं ये सच्चे वैराग्य, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसे प्रवचन करता कोई मिल गया आपको, ऐसे ही गुरु मिल गया वो भी आचरण नहीं करता है, लोभी गुरु पापी चेला दोनों नरक में, बस हालत क्या होगा। हिरण्यकशिपु जैसे प्रवचन करता भाई गुरु मिल गए तो क्या होगा। लेकिन ऐसे ही सच्चा वैराग्य प्रभुपाद तात्पर्य देखते हैं कि प्रकृति में चार प्रकार की व्यक्ति भगवान के शरण में आते हैं। भगवान गीता में कहे कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, लेकिन आर्त अर्थार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है संसार में आते हैं। ये विपदग्रस्त होकर जब आते तो तभी विपद आने से व्यक्ति थोड़ा मंदिर में आना सोचता है ना, तो रोना सोचता है। इसलिए प्रभुपाद कहते कुंती महारानी भी ये बात कहा, विपद असंतु ही तत्र तत्र जगत गुरु, ज्यादा ज्यादा हमको विपद दीजिए दुख दीजिए, दुख आने से हमारा ज्यादा स्मरण होगा कौन कृष्ण है। दुख में सुमरण सब करे, सुख ना सुख में करे ना कोई, यदि सुख में सुमरण करें दुख कहा के हुई है। लेकिन सुख में कोई स्मरण नहीं करता है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये साधारण कंडीशन सोल सब आर्त ने आर्त और अर्थार्थी होते दुखी होकर आते हैं, और ऐसे ही दुख ज्यादा देने से अच्छा है कि ये लोग कम से कम मंदिर में आएगा और भगवान का स्मरण कर पाएगा, ऐसे ऐसे सच्चे संत की संग फिर इनको संग प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए कुंती महारानी कहते कि प्रभु मुझे ज्यादा विपद दीजिए, हमें विपद दीजिए, भौतिक संपदा जो देंगे तो फिर भूल जाएंगे। संपद में रहकर आप हमको हस्तिनापुर के सिंहासन दिए, युधिष्ठिर को सम्राट बना दिए और आप तुरंत जा रहे हैं कहाँ द्वारका प्रस्थान कर रहे हैं, ये सही नहीं है। वरन वही अच्छा था, हम जंगल में रह रहे थे भीख माकी खा रहे थे, लेकिन आप हमेशा हमारा स्मरण में रहते थे और हमारे पास में आते थे, ये अच्छा था। इसलिए ये सब बाधक है। कुंती महारानी कहते कि जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभीर एदमान मदह पुमान नैव संति ही क्या श्लोक तुम अकिंचन गोचर, आप अकिंचन व्यक्ति की गोचर में आते हैं, जो सब कुछ त्याग कर है सब कुछ आपके चरण में अर्पण कर चुका है, जो अपने को करता नहीं समझता है सब कुछ दे दुआ आपके चरण में अर्पण करके मानस देह गेह जो कि छु मोर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर, भक्ति विनोद ठाकुर गए सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ नहीं है। अकिंचन व्यक्ति जो है सब कृष्ण के चरण में समर्पण, कृष्ण चरण में समर्पण करके है भगवान की भक्ति में जो समर्पित है तो फिर उसी को कृपा मिलता भगवान की। नहीं तो जो सोचते अच्छे घर में जन्म लिया हूँ बहुत सुंदर हूँ बहुत ऐश्वर्य है ये सब भक्ति में बाधा डालते हैं। तो इस प्रकार सच्चे वैराग्य हमारे मन में कैसे उत्पन्न होगा, जब आप किसी महान संत के संग प्राप्त करेंगे। साधु संग बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं, दूसरे कर्म से नहीं भक्ति क्या होगा। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहे क्षय, संसार का भी क्षय नहीं होगा, संसार के प्रति आसक्ति नहीं छूटेगा जब तक किसी महान संत कृपा नहीं किया है। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो गया, कोई प्रश्न है? प्रश्न है किसी की? हाँ
हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर समझाया। और महाराज बता रहे थे अगर कोई जो व्यक्ता हो अगर वो शुद्ध ना हो या अपनी जिंदगी में अपना वो शिक्षा अपना ना लाओ तो जो सुन रहे हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन महाराज अगर ऐसे अगर जो सुन रहे हो जो श्रोता है अगर वो सिंसियर,
श्रोता भी सिंसियर है, दोनों को होना चाहिए सिंसियर है। प्रभुपाद कहते कि कोई प्रकृति में कोई भौतिक एग्जाम्पल है, जो स्त्री यदि गर्भधारण करने के लिए सक्षम है पुरुष यदि वीर्यवान है तभी पुत्र जन्म हो सकता है। तो इसी प्रकार श्रोता वक्ता दोनों का है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों योग्य थे। यहाँ पर हिरण्यकशिपु योग्य था ना वो दोनों भी योग्य थे, कौन दीति भी योग्या श्रोता थी, इन दीति ने पहले से ही मिस्टेक की थी, किसको किसके अपराध की, ये हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप क्यों जन्म लिए, क्योंकि अपने पति की बात नहीं सुनी, किसके कश्यप मुनि है, कश्यप मुनि योग्य व्यक्ति थे लेकिन उनकी बात नहीं सुने, संध्या के समय में इनको बाध्य कर दी है संभोग के लिए, उसी से कैसे तो क्रोधित हुए सब भक्त मैंने वो तो पकड़ लिए तो क्या करेंगे। लेकिन कहे कि तुम्हारा ये असंभव असमय में संध्या समय में तुम मुझे संभोग के लिए बाध्य कर दिया इसलिए तुम्हारा गर्भ से दो राक्षस जन्म होंगे हैं। इसलिए कहते कि गर्भाधान संस्कार वैदिक रीति कब संभोग करना चाहिए उसके स्थान है संभोग संध्या समय में नहीं त्रिसंध्या में। तो इसलिए दीति दीति की भी कमी थी वो कोई श्रोता क्वालिफाइड नहीं थी और इसलिए श्रोता प्रवक्ता दोनों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए श्रोताओं को भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए श्रोता भी सावधानी से सुने हैं उसको श्रद्धा भी होना चाहिए उसके पास में। लेकिन फिर भी कभी कभी श्रोता के पास में योग्यता पूरे न होने पर भी यदि करुणा है किसका साधु का। पाश्चात्य जगत में ऐसे कह रहे थे कि और जो विदेश लोग सोचने लगे कि बाद में भक्ति रसानंद पढ़े रूप गोस्वामी कहते कि यदि पूर्व जन्म में कुछ सुकृति नहीं होता भक्ति नहीं होता तो फिर पूर्व जन्म में कुछ नहीं कहते इस जन्म में भक्ति का प्रारंभ नहीं कर सकता। सब प्रभुपाद जी को आके देखा है बोले प्रभुपाद इसका मतलब हम लोग पहले से जन्म में सब कुछ किए थे क्या कुछ सुकृति किए थे कुछ पुण्य किए तभी तो आपके तभी भक्ति किए रहे कर रहे प्रभुपाद जी कहे नो इज ओनली ड्यू टू माई कजलेस मर्सी ये कारण है। लेकिन कभी कभी संत चाहता है इसकी उद्धार हो जाए वो उद्धार हो जाता है। ये लोग क्वालिफाइड नहीं थे कोई दशरथनाकर या कौन सा मुरगारी लेकिन नारद जी ने इन क्वालिफाइड बनाए करुणा की भावना से वो प्रार्थना करते हैं उनके लिए। जो संत भगवान को आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करेगा भगवान आपके हृदय में बैठे फिर आपको योग्यता दे देते हैं उसकी प्रार्थना की बल पर है। इसलिए संत के संग पाप प्राप्त करना यही बड़ा जरूरी है। आप क्वालिफाइड हो न हो लेकिन संत यदि चाहता है इसको उद्धार ये जीव का उद्धार हो जाए उसकी उद्धार हो जाएगी है उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे कौन कृष्ण पूर्ण करते हैं। षडांग शरणागति हईवे जहा रहा प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार श्रीनंद कुमार कृष्ण एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना को श्रवण करके फिर वो उसको उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु वक्ता था लेकिन यदि ऐसे यहाँ पर नारद जी वक्ता होते तो और स्थिति कुछ अलग हो सकता था है ठीक है। और कोई प्रश्न है कोई प्रश्न है हाँ यहाँ पर केवल आप प्रभुपाद जी के आदेश पालन कर रहे हैं। किसके आदेश पालन कर रहे हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी कहे कि तुम किताब वितरण करो मेरे किताब की बांटो तो मैं प्रसन्न होऊंगा हैं। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो मेरे किताबों की वितरण करो। एक महान संत को प्रसन्न करने की भावना लेकर हम केवल वितरण करते हैं लेकिन हमारा पास शुद्धता नहीं है लेकिन वो गीता में शुद्धता है। गीता खोल के जो पढ़ रहा है वो आपका संग नहीं कर रहा किसका संग कर रहा है प्रभुपाद जी के संग कर रहे हैं है ना। आप गीता दे दिया तो आपका आप थोड़ी उसको कुछ बोला है कोई प्रोफेसर खड़ा होकर थोड़ी किया आप गीता दे दिया लेकिन वो गीता जो पढ़ेगा भक्ति वेदांत तात्पर्य वो संग कर रहा है प्रभुपाद जी के उसके परिवर्तन होगा ठीक है। और कोई प्रश्न कोई प्रश्न नहीं यार ठीक है। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हिदाय गुरु प्रेमानंदी।